समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
ज्ञान इंसान की पहचान है। ज्ञान ही है जो इंसान को जानवर से अलग बनाता है। इस ज्ञान को हासिल करने का बेहतरीन तरीका किताबें हैं, लेकिन कागज पर छपी या आजकल डिजिटली उपलब्ध किताबों से भी बढ़कर जो किताब है और जिसका पढ़ना हमारे लिए सबसे जरूरी सबसे अहम है, वो किताब हम खुद हैं। जी हाँ, अगर हमने खुद को पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि सब कुछ पढ़ लिया। दुनिया की सबसे अच्छी किताब होने के नाते वो हम ही हैं जो हमारी राह में आई हर समस्या का समाधान खुद में समेटे हैं। इसलिए दुनिया भर का ज्ञान हासिल कीजिए, हर किस्म की अच्छी किताबें पढ़िए, लेकिन सबसे पहले खुद को पढ़िए। हिकमत यही है। फिलहाल वक्त है कि कुछ समाचार पढ़ लिए जाएं, वो भी उस कार्यक्रम में जिसका आप हर सवेरे इंतजार करते हैं। तो आपके इस हर सवेरे के इंतजार को खत्म करते हुए शुरू करते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर। आज सवेरे में आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर और साथ हैं रेणु कटारिया। रेणु कटारिया, आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं, क्या वजह है?
मैं आपको सुन रही थी नईम, एंड वेरी पॉजिटिव वेन एवर आई हैव माई प्रोग्राम विद यू एंड वी आर को एंकरिंग टूगेदर। मैं बहुत खुश होती हूँ आपका सुन के, इतने पॉजिटिव विचार आप लोगों को सुबह सुबह सुनाती हैं। इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती
क्या
है?
क्या बात है, मजा आ गया आपकी बात सुनकर मुझे।
जी जी, थैंक यू। एंड नईम, वी आर ऑल्सो वेलकम ऑल आर लिसनर्स ऑन आकाशवाणी FM गोल 100.1 MHz एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। एंड डियर लिसनर्स, एज नईम हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, we will be bringing you our forever exciting daily news magazine program Aaj Savere, wherein over the next half an hour we will bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 9th of August. So let's begin with the headlines first.
Ji, पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ 89.45 मीटर थ्रो करके कल रात पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके बाद पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के थ्रो के साथ 90.57 मीटर के सर्वकालिक ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज 89.34 मीटर के थ्रो के साथ क्वालिफिकेशन राउंड में आगे रहने के बाद फाइनल में पहुंचे। वो 2008 और 2012 के खेलों में कांस्य और रजत जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार के बाद ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी और कुल मिलाकर तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वो नॉर्मन प्रिचर्ड, सुशील कुमार, पीवी सिंधु और मनु भाकर के बाद एक से अधिक व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले पांचवें भारतीय भी बन गए हैं।
And President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated Neeraj Chopra for winning the silver medal at the Paris Olympics. In a message, President Murmu said that India is proud of him and that his feat will inspire generations to come. Congratulating Neeraj Chopra, Prime Minister Modi said that Neeraj has shown his brilliance and India is elated as he comes back with yet another Olympic success. Home Minister Amit Shah praised Neeraj Chopra and said that he has enhanced the honor of the Tiranga.
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से मालदीव की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना और नए अवसरों की खोज करना है। विदेश मंत्री की ये यात्रा इस साल जून में नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की भारत यात्रा के बाद हो रही है। मालदीव भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश है और हिंद महासागर में महत्वपूर्ण रणनीतिक भौगोलिक स्थिति रखता है। भारत के पड़ोसी प्रथम नीति और संपूर्ण क्षेत्र में विकास और सुरक्षा के लिए सागर दृष्टिकोण को दर्शाता है। डॉ जयशंकर की ये यात्रा इस साझेदारी को बढ़ाने, सहयोग के नए अवसरों की खोज करने और पिछले साल आई चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित रहेगी।
Nobel laureate Mohammad Yunus was sworn in as the head of Bangladesh's interim government. Bangladesh President Mohammad Shahabuddin administered the oath to him at Bangabhavan in Dhaka yesterday evening. Prime Minister Narendra Modi has extended his best wishes to Professor Mohammad Yunus for assumption of his new responsibilities in Bangladesh. In a social media post, the Prime Minister hoped for an early return to normalcy, ensuring the safety and protection of Hindus and all other minority communities in Bangladesh. Mr. Modi said, India remains committed to working with Bangladesh to fulfill the shared aspirations of the people of both the countries for peace, security and development. Mr. Mohammad Yunus is a Bangladeshi entrepreneur, banker and economist. He was awarded the Nobel Peace Prize in 2006 for founding the Grameen Bank and pioneering the concepts of microcredit and microfinance.
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ एस एस संधू विधानसभा चुनावों की तैयारियों की निगरानी के लिए जम्मू कश्मीर के दो दिन के दौरे पर हैं। आयोग ने कल प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। आयोग आज मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ अंतिम बैठक करेगा और समीक्षा के लिए जम्मू जाएगा। वहां संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
The unique registered investor base of National Stock Exchange, NSE, has crossed the 10 crore mark for the first time. It took over 25 years for the registered investor base to hit the 4 crore mark in March 2021. The subsequent 1 crore increments have come through at an accelerated pace, taking on an average of about 6 to 7 months. The last crore was added in just over 5 months, the NSE said in a release. During this period, daily new unique investor registrations have averaged between 50,000 to 78,000. The investor base has seen more than 3 times jump in the last 5 years, facilitated by rapid growth in digitization, rising investor awareness, financial inclusion and sustained market performance.
देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अनुरोध किया कि वो अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में 2022 में शुरू किया गया था और पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे अपलोड किया। इस दौरान देशभर में 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और 13 अगस्त को संसद सदस्य और मंत्री तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे।
हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है
और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को harghartiranga.com पर अपलोड करें।
और आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी खास खबरें। रेनू, आपके पास सबसे पहले कहां की खबर है?
आई हैव द न्यूज फ्रॉम चेन्नई मेट्रो। नईम
जी,
द इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी टू कोऑर्डिनेट एज नॉलेज पार्टनर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। Ashwati Dilip, South Asia Director of Institute of Transportation and Development Policy, signed the MOU. The NGO is already the knowledge and technical partner for Chennai Smart City, which will focus on ideas about sustainable mobility through key initiatives such as policies on non-motorized transport, healthy streets, studies on accessibility to public transport, infrastructure improvements and strengthening inclusive master planning. मूविंग ऑन टू नेम, आप कौन सा मेट्रो ले रहे हैं?
मैं दिल्ली से कुछ खबरें अपने श्रोताओं तक पहुंचा देना चाहूंगी। आईआईटी दिल्ली का 10 अगस्त को 55वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बैनर्जी ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जुबिलेंट भरतिया ग्रुप के संस्थापक और सह अध्यक्ष हरिएस भरतिया और आईआईटी दिल्ली के एक पूर्व प्रतिष्ठित छात्र 1979 बैच बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग स्नातक छात्रों को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। श्री बैनर्जी ने कहा कि 55वें दीक्षांत समारोह में 2600 से अधिक छात्र अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे, जिसमें 25% महिला छात्र है।
एंड मूविंग ऑन टू बेंगलुरु, द साउथ वेस्टर्न रेलवेज हैज रिज्यूम्ड पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज येस्टरडे बिटवीन बेंगलुरु एंड बेंगलुरु। द रेलवे ट्रैक बिटवीन कडगरावली एंड येडकुमेरी स्टेशन इन द सकलेशपुर एंड सुब्रमण्य रोड सेक्शन वॉज ब्लॉक्ड बाय अ लैंडस्लाइड ऑन July 26. द डेडिकेटेड टीम्स वर्कड रिलेंटलेसली इन हैवी रेन एंड क्लियर द ट्रैक ऑफ ऑल द डेब्री। After an engine rolling test, the track was certified fit for goods trains only. A fully loaded goods rake has successfully traversed on the restored track that has marked the successful completion of the restoration work. As a precautionary measure, a speed limit of 15 km per hour has been imposed initially. After finding the track fit for trains, the railways resumed passenger train service today from Yashwantpur in Bengaluru to Mangaluru Junction. The Southwestern Railway Division has said that all the trains will resume on this route as per their scheduled date and timings.
मुंबई की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना के लिए 24,74,82,000 रूपये वितरित करने की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री कृषि और खाद्य प्रसंस्करण योजना के कार्यान्वयन के लिए 24,74,82,000 रूपये की धनराशि वितरित करने के लिए कृषि आयुक्त को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में कृषि विभाग की ओर से सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना किसानों के उत्थान के लिए 100% राज्य प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना, किसानों की भागीदारी के माध्यम से आधुनिक तकनीक पर आधारित परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करना है, कृषि उपज का मूल्य उत्पादित भोजन की गुणवत्ता बढ़ाना, ऊर्जा की बचत करना और परियोजनाओं के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है।
एंड द लास्ट न्यूज दैट आई हैव नेम इज फ्रॉम हैदराबाद मेट्रो। द ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और GHMC हैज टेकन अप इनिशिएटिव टू कलेक्ट डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग्स फॉर सर्वे अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम और GIS एंड गिव यूनिक आइडेंटिटी नंबर्स नोन एज डिजिटल एड्रेस फॉर बिल्डिंग्स। Commissioner Amrapali Katta informed that this is not linked to property tax. The commissioner clarified that property tax increase or decrease is not an issue and that people must not panic. She further said the project will help both ways. If an individual is levied with more or less property, and then it is a long process for them to visit the offices, court, and then the additional commissioner and commissioner. The GIS unique number known as digital address will be a new scientific number. The data will be secured and access to data will be saved in RailTel of the Government of India, Ministry of Railways server.
और कोलकाता की बात करें तो सरकार ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम जल्द पूरा करने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ 2200 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें से 1600 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। ऐसे कई स्थान हैं जहां नदियों द्वारा सीमा का संकेत दिया जाता है। जमीन पर बाड़ लगाने का काम पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं अपने उस जगह पर जहां पर हम महानगरों के मौसम का हाल अपने
प्रोग्राम को देते हैं।
जी, दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
And talking about Chennai, it is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature is 24 degrees Celsius and the maximum will be around 34 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is 21 degrees Celsius and the maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और रेनू, अब हम चलते हैं अपने श्रोताओं के साथ अपने विशेष पेरिस ओलंपिक सेगमेंट की तरफ और सुनते हैं ये रिपोर्ट।
पुरुष हॉकी में भारत ने लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता। एक रोमांचक मैच में भारतीय टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल्स की बदौलत स्पेन को 2-1 से शिकस्त दी। आकाशवाणी से बात करते हुए हरमनप्रीत सिंह,
अमेजिंग गेम आई थिंक, जो हमें अपने आप पे बिलीव था डे वन से कि हम अच्छा करेंगे इसमें, बट अनफॉर्चुनेटली जो गोल्ड का सफर था वो नहीं कर पाए, बट आई थिंक जो हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और बैक टू बैक जीता है, ये हिस्ट्री है, हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। सारे टीम प्लेयर्स की मेहनत है, कोचिंग स्टाफ की, जो हम पे इतना काम कर रहे हैं एंड ये प्लेयर इतना जो ट्रस्ट रख रहे हैं एक दूसरे पे।
भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक के साथ गोलकीपर पीआर श्रीजेश को विदाई दी। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक का मुकाबला नेदरलैंड्स और जर्मनी के बीच हुआ। निर्धारित समय तक दोनों ही टीमें 1-1 से बराबरी पर थीं, मगर शूटआउट में डच गोलकीपर पिरमिन ब्लाक ने बेहतरीन बचाव किए और अपनी टीम को 24 साल बाद हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाया। आज पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में अमन सहरावत पोर्टोरिको के डारियन क्रूज से कांस्य पदक का मुकाबला खेलेंगे। एथलेटिक्स में भारत की पुरुषों और महिलाओं की टीमें 4x400 मीटर रेस में हिस्सा लेंगी। पेरिस से आकाशवाणी के लिए महेंद्र सिंह लालस।
और अब रेनू, हम जरा थोड़ा सा ये देख लें कि आज के दिन यानी कि 9 तारीख को, 9 अगस्त को इतिहास में क्या क्या खास हुआ था।
जी बिल्कुल,
तो सबसे पहले तो एक बहुत ही अहम घटना अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी। 1925 में आज के दिन 9 अगस्त को बहुप्रसिद्ध काकोरी कांड की घटना घटित हुई थी, जो हमारी आजादी के इतिहास में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
जी, एंड ऑन दिस डे दैट इज 9th of August इन द ईयर 1942 सुभाष चंद्र बोस नेताजी फॉर्म्स द इंडियन नेशनल आर्मी इन मलाया विद द हेल्प ऑफ द जापानीज एंड ही इनॉग्रेट्स द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एट सिंगापुर।
अगर आपने जापान की बात की है तो 1945 में जापान पर अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम आज ही की तारीख को गिराया था।
यस, वेरी सैड। ऑन टुडे दैट इज 9th of August 1952 न्यू दिल्ली रिपोर्ट्स दैट 20 मिलियन इंडियन पेजेंट्स वर इम्पेरिल्ड बाय क्रॉप फेलियर्स। इन 1963 ऑन दिस डे इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू एड इट्स सिग्नेचर टू द टेस्ट बैन ट्रीटी एट मॉस्को। इन 1966 हीरोज ऑफ द 1942 मूवमेंट वर ऑनर्ड एट अ रैली इन रेड फोर्ट। एंड इन 1969 ऑन 9th of August Ochterlony Memorial in Calcutta was renamed as Shahid Minar.
1999 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने प्रधानमंत्री सर्जेई स्टेपशिन को बर्खास्त कर खुफिया सेवा के प्रमुख व्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सन 2000 में जिम्बाब्वे में व्यापक विरोध के बावजूद भूमि सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। 2005 में नासा का मानव युक्त अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 14 दिन की अपनी साहसिक और जोखिम भरी यात्रा के बाद कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस पर सकुशल उतरा। 2007 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मरम्मत के महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम लेकर अंतरिक्ष यान एंडेवर अपने अभियान पर निकला।
And I'm moving a little back in the year 1971. A 20-year non-aggression treaty for peace, friendship and cooperation was signed between India and USSR on this day. And on the same day in 1998, India moves the World Trade Organization against the European Union, reimposing anti-dumping duties on unbleached cotton grey fabric import.
आप थोड़ा सा पीछे गए तो मैं भी थोड़ा सा पीछे जाऊंगी क्योंकि important चीज है, इसलिए बता देते हैं। 2012 में भारतीय सेना ने 9 अगस्त 2012 को परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था।
यस yes.
तो ये तो बातें हुई हमारी कि आज के इतिहास में क्या क्या खास हुआ, लेकिन आज का इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है, ये भी आज का ही इतिहास है। 9 तारीख को किन किन महान शख्सियतों ने इस दुनिया में कदम रखा और कौन कौन हमें छोड़कर चले गए।
वेरी ट्रू। नहीं
तो हमारी वो वाला सेगमेंट आ गया है जिसमें हम ये सब बात कर
रहे
एक्चुअली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राम किंकर उपाध्याय की, बहुत बड़ा नाम है जिनकी आज पुण्यतिथि है। 1 नवंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था और आज के दिन 2002 को राम किंकर उपाध्याय हम सबको इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। भारत के मानस मर्मज्ञ, कथावाचक और हिंदी साहित्यकार थे राम किंकर उपाध्याय। 1999 में भारत सरकार ने पद्म भूषण देकर के उन्हें सम्मानित किया था। और इनके बारे में ये बता देना जरूरी है कि बचपन से ही इनकी मेधा शक्ति इतनी विकसित थी कि मुश्किल और गंभीर लेखन देश विदेश का विशद साहित्य सब कुछ इन्होंने बहुत ही कम समय में पढ़ लिया था, उसका अध्ययन कर लिया था, अपने दिमाग पर उसको छाप लिया था और उसी वजह से वो आगे चल करके इतने बड़े साहित्यकार भी बन गए।
बिल्कुल। एंड नईम, आई वॉज सो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग अबाउट दिस लेजेंड जिनका नाम है विटनी ह्यूस्टन।
वाओ, इतना बड़ा नाम, रियली।
टुडे इज हर बर्थ एनिवर्सरी। शी वॉज एन अमेरिकन सिंगर, एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर एंड फिलान्थ्रोपिस्ट नोन एज द वॉइस। शी इज वन ऑफ द मोस्ट अवॉर्डेड एंटरटेनर्स एंड वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम विद सेल्स ऑफ ओवर 220 million रिकॉर्ड्स वर्ल्ड वाइड। हर क्रॉसओवर अपील ऑन द पॉपुलर म्यूजिक चार्ट्स एंड हर परफॉर्मेंसेज इन्फ्लुएंस्ड द ब्रेकिंग डाउन ऑफ जेंडर एंड racial barriers as well as popular culture. Known for her vocal ability and distinctive timbre, Rolling Stone ranked Houston second on the list of the greatest singers of all time. पर इनके बारे में एक बहुत जरूरी बात जो कि अब हम अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे। शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ब्लैक विमेन टू अपियर ऑन द कवर ऑफ 17 आफ्टर बिकमिंग अ टीन मॉडल इन 1981 विद द गाइडेंस ऑफ आरिस्टा रिकॉर्ड्स चेयरमैन क्लाइव डेविस। ह्यूस्टन साइंड टू द लेबल एट एज 19 अ फर्स्ट टू स्टूडियो एल्बम्स विटनी ह्यूस्टन इन 1985 एंड विटनी इन 1987 बोथ पीक्ड एट नंबर वन ऑन द बिलबोर्ड 200 एंड आर अमंग द बेस्ट सेलिंग albums of all times.
Wow.
She is the only artist to have 7 consecutive number 1 singles on Billboard Hot 100 since 1988. Her third album I'm Your Baby Tonight 1990 mein jo aaya tha, yielded 2 US number 1 singles, the title track and All the Men That I Need. But Houston also entered the film industry with the romantic thriller film The Bodyguard in 1992, which despite its mixed reviews became the 10th highest grossing film to that date. Its soundtrack won the Grammy Award for Album of the Year and remains the best-selling soundtrack album of all time. The lead single I Will Always Love You won the Grammy Award for Record of the Year and became the best-selling female single in history. But Naeem, rather than we listening to I Will Always Love You, I want our listeners to listen to this foot-tapping song sung by Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
Ah.
And Houston won numerous accolades, including 2 Emmy Awards, 8 Grammy Awards, including 2 Grammy Hall of Fame honors, 14 World Music Awards, 16 Billboard Music Awards, that is 46 Billboard Awards in all, and 22 American Music Awards. Houston holds the record for the most American Music Awards received in a single year by a woman with 8 wins in 1994.
Aur aapne ye jo kuch bataya inke बारे में, उसके बाद अगर हम वापस हिंदुस्तान आए तो एक बहुत मशहूर हस्ती की आज जयंती है और वो मशहूर किस तरह कि हम सबके घरों में वो हमारे दिलों से ज्यादा रहते थे या हम सबके दिलों से ज्यादा हम सबके घरों में रहते थे, इस तरह से उनको हम उनका इंट्रोडक्शन करा सकते हैं।
नेम वी आर वेटिंग, प्लीज बताइए वो कौन सी हस्ती है।
वो है मनोहर श्याम जोशी। ज्यादातर हमारे सभी श्रोता उनके नाम से वाकिफ होंगे और जो नाम से वाकिफ नहीं है उनका जब हम काम बताएंगे तो उनको इंस्टेंटली याद आ जाएगा, अच्छा हमने वाकई इतनी बड़ी
के बारे में सुना है।
जी, आज उनकी जयंती है। 9 अगस्त 1933 को अजमेर में इनकी पैदाइश हुई थी और 30 मार्च 2006 को अपनी ही नई दिल्ली में उनका निधन हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत ही मशहूर गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक, फिल्म पटकथा लेखक, उच्च कोटि के संपादक, कुशल प्रवक्ता और स्तंभ लेखक, ये सब कुछ थे। इसी को कहते हैं बहुआयामी पर्सनालिटी, मतलब मल्टी
टैलेंटेड,
है ना। और कैसे हम सबके दिलों में और घरों में एक साथ इन्होंने कदम रखा और किसमें ज्यादा रहे वो हम नहीं बता सकते, वो दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों के जरिए, जो उस दौर के हमारे श्रोता हैं, जिस दौर में सिर्फ दूरदर्शन ही हुआ करता था, ये जो आजकल इतने सारे चैनल्स हैं जब नहीं होते थे, तो दूरदर्शन पर कुछ धारावाहिक बेतहाशा बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए, जिनमें बुनियाद, नेताजी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और हम लोग जैसे जो सीरियल्स थे, ये जो धारावाहिक थे, ये भारत के घर घर में मशहूर हो गए थे। और ये धारावाहिक और फिल्म लेखक से संबंधित पटकथा लेखन जो था वो मनोहर श्याम जोशी ने किया था। तो अगर मैंने ये कहा कि वो हमारे घरों और दिलों में एक से ज्यादा, मतलब किसमें ज्यादा घर कर गए, तो
वो बताना थोड़ा मुश्किल होगा,
है ना
जी।
और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि वाकई ये सारे जो सीरियल्स मैंने अभी बताए हैं, खासतौर पर हम लोग से ही जो धारावाहिकों का एक सिलसिला था वो ऐसा शुरू हुआ जो आज तक जारी है।
आई नो, है ना। वी ऑलवेज गो बैक समटाइम्स ऑन सम ऑफ द चैनल्स टू वॉच हम लोग एंड बुनियाद एंड ऑल दीस सीरियल्स।
एक्चुअली मतलब अपने बचपन को जब हम रिकॉल करते हैं और इनमें से कुछ याद आता है, तो हम इंस्टेंटली इंटरनेट पर डाल करके देखते हैं कि अच्छा ये चीज थी, वो रिकॉल किया और उसको। तो ये मनोहर श्याम जोशी और उन जैसे महान लोग थे जो आज तक हमारे दिलों में हैं। दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के भी वो संपादक रहे थे।
एंड टॉकिंग अबाउट पुराना जमाना, नईम
जी,
देयर इज अनदर पर्सनालिटी दैट आई वुड लाइक टू कॉल इन हियर, समीर खक्कर।
हाँ, अरे क्या बात कही।
आई थिंक द सेम टाइम वेन वी वर वॉचिंग हम लोग एंड बुनियाद, वी वर ऑल्सो वॉचिंग अ ब्यूटिफुल सोप ऑपरा कॉल नुक्कड़,
और उसका एक एक कैरेक्टर आज तक लोगों के दिमाग पर अंकित है।
दिस कैरेक्टर विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज खोपड़ी, यस, हु वॉज एन इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर इन बॉलीवुड। सम ऑफ समीर खक्कर्स नोटेबल वर्क वॉज इन टीवी शोज नुक्कड़, सर्कस, श्रीमान श्रीमती एंड फिल्म सच एज पुष्पक, परिंदा एंड जय हो। खक्कर्स नोटेबल टीवी सीरियल रोल्स इंक्लूड वन ऑफ द ड्रंकन कैरेक्टर खोपड़ी फ्रॉम यस्टरडेज माइलस्टोन TV serial Nukkad in 1986, directed by Kundan Shah and Saeed Akhtar Mirza. His most memorable film role was in the dialogue-free Pushpak Vimana, 1987, of the alcoholic businessman who gets kidnapped by the hero Kamal Hassan. पर यहाँ पर हम इनका एक डायलॉग सुन लेते हैं।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और खासतौर में जैसे आपने खोपड़ी कहा,
जी,
तो उन्होंने जिंदगी में इतनी किस्म के किरदार निभाए, लेकिन खोपड़ी जो उनके ऊपर एक ठप्पा लगा,
that will always, yes, remain with us. So let's listen.
एक खोपड़ी, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा यार।
तो क्या मैं तेरे से बात कर रहा है ना?
एक खोपड़ी, ये जो बात कर रहा है ना, वो तेरी समझ में आने वाली नहीं है। तू काहे को भेजा खा रहा है?
अरे भाई क्या याद दिला दिया रेनू आपने, मैं भी आपको कुछ याद दिला दूं।
जी बिल्कुल।
एक बहुत बड़ा नाम था सावन कुमार टाक। 9 अगस्त 1936 को उनका जन्म हुआ था और आज उनकी जयंती है, क्योंकि 25 अगस्त 2022 को वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेंशन करना जरूरी है कि प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, निर्माता और गीतकार थे सावन कुमार टाक, जिन्होंने कई हिन्दी फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें खासतौर पर इनको एस शब्द से या सा शब्द से खास मोहब्बत थी उनको। साजन बिना सुहागन, सौतन, सौतन की बेटी, सनम, बेवफा, बेवफा से बेवफा जैसी जो कामयाब फिल्में हैं वो इन्होंने बनाई, और उन्हें संजीव कुमार और महमूद जूनियर जैसे अभिनेताओं को ब्रेक देने का श्रेय भी जाता है। और एक और खास बात इनकी ये रही कि जो एक फिल्म थी राजेश खन्ना और पद्मिनी कोल्हापुर है और टीना मुनीम अभिनीत फिल्म सौतन, वो मॉरिशस में शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी और ये प्लैटिनम जुबली हिट फिल्म भी थी।
बिल्कुल। तो क्यों ना एक बहुत ही प्यारा गाना सुन लेते हैं।
बिल्कुल।
गाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
And today is the birthday of G. Mahesh Babu, who is an Indian actor, film producer, media personality and philanthropist who works in Telugu cinema. He is one of the highest paid actors in Indian cinema and is featured in Forbes India's celebratory 100 list since 2012. And also, today is the birthday of Vivek Mushran, who is an Indian actor who predominantly works in Hindi film productions and television productions. And we are going to yaad kar rahe hain kyunki ek bahut pyara sa gana hum apne listeners ko sunana chahte hain.
Ilu ilu
ji
kya hai ye ilu ilu jab baagh mein koi phool khila to bhavre ne kaha पर्वत पे छाई काली घटा तो बोली हवा
इलू इलू. लेकिन अब वक्त जो है वो कह रहा है कि अब अनुमति ले ली जाए अपने श्रोताओं से. तो नईम अख्तर और रेणु कटारिया को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए.
नमस्कार.